ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर नहीं हैं, इनका भी आविर्भाव अर्थात जन्म तथा तिरुभाव अर्थात मृत्यु होती है। प्रमाण के लिए देखिए देवी भागवत महापुराण।
ब्रह्मा, मैं, विष्णु और शिव यह तुम्हारी प्रभाव से जन्मवान है। हम तो जन्मवान है, हमारा तो जन्म होता है और मरते हैं, नित्य नहीं है, हम अविनाशी नहीं है। फिर इंद्रादि दूसरे देवता नित्य किस प्रकार हो सकते हैं?
कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन।
परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनार कुल मालिक कबीर देव कबीर साहब जी की असीम कृपा से आज हमें ये यथार्थ ज्ञान प्राप्त हुआ है। हमें ये मालूम हुआ हम कौन हैं, कहां से आए हैं, हम इस गंदे लोक में कैसे फंस गए हैं, अब हम यहां से कैसे छूट सकते हैं, हमारा मूल ठिकाना मूल स्थान कहां पर है। अब हमें यह भी पता चल रहा है कि हम कोई भी प्राणी चाहे कितना ही वृद्ध है कितना ही रोगी है कोढ़ी है कितना ही मानसिक परेशान है कितना ही उसको घाटा होता है, कोई भी व्यक्ति मृत्यु नहीं चाहता। और ये पता होते हुए कि मृत्यु डेफिनेट है और फिर भी हम बिल्कुल मरना नहीं चाहते, चाहे कितने वृद्ध हो जावा कितना ही हम दुखी हो जाएं। और ये बात बिल्कुल जायज भी है भी, क्यों तो सारा जीवन हम लगे रहते हैं अपने परिवार पोषण के लिए, अपना एक रैन बसेरा बनाने के लिए, और वो पूरा नहीं हो पाता, इतने मृत्यु होने की बारी आ जाती है। यू क्या सांग हुआ, क्या व्यवस्था हुई, एक विशेष विचारणीय विषय है कि इंसान सारा जीवन अपने परिवार पोषण में एक मकान बनाने और तथा कुछ आधुनिक सुविधाएं प्राप्त करने में सारा जीवन लगा देता है, बच्चों की शादी विवाह करके न्यू सोचा है कि अब मुझे कुछ राहत मिलेगी, इतने बुढ़ापा दस्तक दे देता आकर के लिए मैं भी आ गया घोले तैयार, कदे आंख बनवानी कि जाड़ पड़वानी कि सिर में दर्द कि कड़े दुख है कमर में दर्द, ऐसी बिरान माटी हो इस जीव की। अब हमारे को दूर से दिखाई देने लग गया क्योंकि हमारा अज्ञान रूपी मोतिया बिंद का ऑपरेशन कर दिया परमात्मा ने, हमारे को आज वो वृद्ध अवस्था खड़ी दिखाई देती है। इसका विकल्प क्या है कि परमात्मा के चरणों में लगा रहने से सच्ची श्रद्धा से भक्ति करने से वो दुख में समय हमारा आसानी से व्यतीत हो जाएगा, परमात्मा का सहयोग हमारे साथ रहेगा तो हमें बहुत हल्का बनेगा वो दुख। और जो परमात्मा की भक्ति नहीं करते और अच्छी पोस्ट से रिटायर होते हैं अच्छे उनको डिपॉजिट जमा पैसा उनका मिलता है और बच्चे उसी समय 50-50 कर लेते हैं, दो हैं तो आधा आधा कर लेंगे और पिताजी के पास केवल पेंशन रह जाएगी। और फिर पेंशन के चक्कर में 31 तारीख ने पिताजी को पूछेंगे कब लाओगे पेंशन। एक भगत बता रहा था कि मेरा मित्र रिटायर हो रहा और बैंक के सामने मिल गया और साथ में उसकी पुत्रवधू, जितनी पेंशन मिल रही थी 5-4 हजार वह सारी उस पुत्रवधू ने ले ली उसका सामने, और उस बुढ़े ताई 10 रुपये दे दिए रिक्शा के, अगले दादा तू बैठ के घर में चाल, में बाजार में सामान ले आऊंगी। तो कहने लगी, मैंने पूछा भी आप किस लिए आई हो पेंशन लेने, तो बुढ़ा आया। वो कहने लगी, इसने दिखता कोई ना, गिन देना हो मैं गेल लाग के गिनवा लू। वह जाली जब उन्होंने कह बुढ़ा रहा गिन दे तुमने खूब आवे है, इसका नो सक है कदे बुढ़ा के मैं राख जा दोबरा 10 रुपये रिक्शा के दे रखे बाकी सारे लेगी। कहने का भाव ये पुण्यात्मा एक अच्छी पोस्ट से रिटायर हुआ था एक बुढ़ा, वो हमारा सेवक बना था, फिर वो पता नहीं क्या उकचुक लगी, दिल्ली का रहने वाला था। ऐसी चर्चा चल रही थी, कहने लगे कि ऐसे बनता है बुढ़ापे में, तो वो कहता है जब पैसे भी ले ले कोई बात नहीं, नाले टॉर्चर भी कर दे, यानी पैसे ले ले कोई बात नहीं वो भी दुख निमट जा, नाले टॉर्चर भी कर दे, बोला टॉर्चर भी गेल करें, और परमात्मा ने ये पहले बता रखे हमारे को कि तुम्हारे साथ ऐसा होगा जो परमात्मा की साधना नहीं करते। परमात्मा कहते हैं भाई मतलब के बिना कोई नहीं प्यारा, स्वार्थ के बिना कोई नहीं प्यारा, बुढ़ा हो वह पड़े खाट में सुने वचन खारे, बुढ़ा हो वह पड़े खाट में सुने वचन खारे, कुत्ते तावण का भी सुख को ना ये छाती फूकन हारे। भाई मतलब के बिना कोई नहीं प्यारा। बूढ़े हो जाते हैं, आंखों से दिखाई नहीं दे, और बूढ़ा बुढ़िया की चारपाई गेट का डला करे, पुत्रवधू कह के जाएगी कि ध्यान रखना दूध को घी को कुत्ते बिल्ली ना खराब कर दें, मैं खेत में चारा लेने जा रही हूं। अब वो बुढ़िया ने दिखे को नहीं, कुत्ता बड़ा शैतान होता है, आंख में चोरनी करके रसोई में पाया करे। एक पुत्र वधू उनकी आई, देखा कुत्तों ने दूध भी खराब कर रखा और घी भी, तो बुढ़ा बुढ़िया को कहती है कि तुम तो छाती फूको मारी, तुम्हारा इतना सुख भी कोई ना, तुम कुत्तों ने हटा दो, यानी कुत्तों की से रखवाली कर दो। बुढ़ा हो वह पड़े खाट में सुने वचन खारे, कुत्ते तावण का भी सुख को ना ये छाती फूकन हारे, ये टॉर्चर और नाले होगा गिल। तो इस तरह परमात्मा कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति, जैसे अभी आपने दिन के सत्संग में सुना था गीताजी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में कि जो व्यक्ति मेरे इस ज्ञान पर आश्रित होकर उन तत्वदर्शी संतों के संपर्क में जाकर उस तत्वरम से यानी परम अक्षर पुरुष से, परम अक्षर परम से और सारे आध्यात्मिक ज्ञान से और सभी कर्मों से जो परिचित हो जाता है, तो वो केवल जरा मरण मोक्ष आए जरा और मरण से मोक्ष के लिए यानी से छुटकारे के लिए ही प्रयत्न करते हैं। तो जरा मरण इसलिए बताया कि यहां बुढ़ापा सबसे डेंजरस टाइम है इस जीव का, और साथ में फिर मृत्यु, मृत्यु उस बुंडी और होनी डेफिनेट। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि हम ऐसे लोक में रहा करते थे जहां मृत्यु नहीं होती थी, और ये मृत्यु हमें कति गंवारा नहीं है, और यह हो रही है, इसलिए हमें यहां सत्संग में आने से पता चलता है कि हम कौन हैं, कहां से आए हैं। इस मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है, ये जानकारी परमेश्वर ने स्वयं आकर के हमें दी है। वो परमात्मा प्रत्येक युग में आते हैं और अपनी जानकारी आप ही बताते हैं, अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को स्वयं ही बता सकते हैं और कोई नहीं बता सकता। और यहां के भगवान, यहां के स्वामी काल भगवान, जिसको ब्रह्म कहते हैं, जिसको सर्वब्रह्म सर्वपुरुष भी कहते हैं, ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, 21 ब्रह्मांड का मालिक है। इसको एक श्राप लगा हुआ है, इसको एक बीमारी लगी हुई है, 1,00,000 मानुषरीधारी प्राणियों का नित आहार करने की, उसके लिए इसने हमें यहां पर पाल रखा है। पुण्यात्माओं, प्रत्येक व्यक्ति परमात्मा को दयालु बताता है, और भगवान उसी का नाम होता है, परमात्मा उसी को कहते हैं जो दुख ना दे केवल सुख दे। पुण्यात्माओं, और यहां के हम जैसे पदार्थ देखते हैं, बहते हुए झरने, गंगा जैसी दरिया, और दिन रात बन रहे हैं, बहुत अच्छी पृथ्वी दे रखी है, इसके ऊपर बाग बगीचे, काजू किशमिश सेब संतरे, और साथ में कितने अच्छे और बहुत से पदार्थ हैं। इन सब को देख करके ऐसे लगता है कि परमात्मा बहुत ही दयालु है, कितनी सुविधा हमें प्रदान कर रखी है। और जब हम समाचार में सुनते हैं या कभी आसपास के क्षेत्रों में से पता चलता है दुर्घटना हुई जिसमें एक ही परिवार के 3 सदस्य की मृत्यु होगी, कहीं पर भूकंप आ गया, अक्षेत्र का अक्षेत्र विनाश को प्राप्त हुआ, तो ऐसे हम देखें तो फिर परमात्मा की दयालुता शंका के घेरे में आ जाती है। पुण्यात्मा, गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1-4 में, और गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 18-22 तक एक विशेष व्याख्या की है, और गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16-17 में। इस गीता ज्ञान दाता से अन्य कोई परमात्मा परमेश्वर बताया है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 3, 8, 9, 10, 18-22, गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1-4, 16 और 17 में, और भी बहुत से स्थानों पर गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62-66, अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 46, इनमें अन्य कोई परमात्मा है जो परमेश्वर है गीता ज्ञान दाता से, और उसके विषय में जानकारी दी है। तो इन सब की जानकारी देते हुए गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 परमात्माओं की व्याख्या की है, एक सर्पुरुष, एक अक्षर पुरुष, और तीसरा परम अक्षर पुरुष। पुरुष कहो चाहे ब्रह्म कहो, प्रभु कहो, राम कहो, जो सर्पुरुष है ये देखिएगा, क्योंकि यही पवित्र सदग्रंथ हम पहले भी पढ़ा करते थे, लेकिन वो अब परमात्मा की वाणी सत सिद्ध होती है। भाई सतगुर बिन काहु न पाया ज्ञाना, जो थो था बुस छड़े किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। गुरु के बिना जो वेद पढ़ते हैं वो कुछ नहीं समझ पाते, अज्ञानी ही रहते हैं। और गुरु जी के बिना, सतगुरु के बिना किसी को भी ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। वो तो ऐसे रह गए जैसे थोथे भूसको, यानी जैसे धान होते हैं उन दानों को झाड़ लेते हैं, उसके पास प्राण रह जाती है। कोई उस प्राण के ऊपर लठ बजा रहा है, लाठी मार रहा, डंडे मार, उसमें पटक पटक का मार रहा, झाड़ रहा है, कुछ नहीं निकला है, वो थोथा भूस है। तो ऐसे ही जो तत्व तरसी संत के अभाव से जो ज्ञान वेदों को, गीता आदि अन्य सदग्रंथों को पढ़ते हैं, वो तो ऐसे हैं जैसे थोथे उसको कूट रहे हों, अर्थात यूजलेस, निराधार, यानी बगैर किसी लाभ के, किसी वो उसका प्रयत्न है, उससे कोई लाभ नहीं, यूजलेस। तो प्रसंग हम यहां ये क्लियर करना चाहते हैं कि एक तरफ तो परमात्मा दयालु कहते हैं, और फिर यहां दया नाम की चीज नहीं, मां के पेट से नंगा आता है ये बच्चा, और शुरुआत कहां से हुई थी इसके, अपना कोई लंबे लंबे पत्ते वृक्षों के जोड़ तोड़कर अपने शरीर को ढका करते थे, धीरे धीरे बुद्धि विकसित हुई, परमात्मा की दया हुई, तो कपड़ों की खोज होगी और भी सुविधाएं बहुत सी हमने बना ली अपने स्तर पर। आप कहीं जंगल में जा रहे हो, वर्षा आ जाती है, सारे भी जो बीमार हो, चाहे सुखी हो चाहे दुखी हो, ओले गिरते हैं, मट मट शर्म लागे, कट्टा कट की तो बाज दौड़ कर जान बचा ली तो बचा ली ना, सारा फूट जाए, बेहोश हो जाए, फलट आ जाती है, कितने का जाओ, कोई जच्चा मरो चाहे बच्चा मरो, रोगी मरो चाहे जवान मरो, कोई किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं। तो इन बातों को देखकर फिर अब हमें डर लगने लग गया, क्योंकि हमारी आंखों का जो ऑपरेशन था हो गया, अज्ञान रूपी अंधकार हट गया और हमने उस दयालु भगवान का पता लग गया। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में तीन भगवान है, पुरुष, छर पुरुष और अक्षर पुरुष। ये देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता, और इसके अनुवादक हैं जय दयाल गोविंद का। ये अधिक से अधिक यही बिक्री है और इसी का नित पाठ किया जाता था, नित स्वाध्याय के लिए इसी का प्रयोग होता रहा ज्यादातर। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है ये, जय दयाल गोविंद का अपने हैंड राइटिंग में लिखा हुआ है। गीता जी अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 16-17 में तीन परमात्मा अलग अलग दिखाए हैं, वर्णित किए, देखिएगा अध्याय नंबर 15 और श्लोक नंबर ये 16 इधर है, ये 16। इसकी संस्कृत भी हम देखेंगे क्योंकि देव ये नागरी लिपि है, कोई दिक्कत नहीं। दिवौ इमौ पुरुषौ लोके सर एव च सर सर्वाणी भूतानि कटुस्त अक्षर उच्यते। इसका अर्थ ये बना है कि इमौ माने इस, लोके माने लोक में, दिवो माने दो, पुरुषो माने परमात्मा प्रभु स्वामी हैं, दो दो भगवान हैं, एक सर एक अक्षर। इसको, इस दोनों को हम यहां भी लगा सकते हैं, सर पुरुष और अक्षर पुरुष। इस संसार में, इस संसार में दो भगवान हैं, सर पुरुष और अक्षर पुरुष, ये दो परमात्मा हैं। और इसी प्रकार इनके लोक में सर्व माने नाशवान, सर्वाणी भूतानी, सभी प्राणियों के स्थूल शरीर तो नाशवान है और जीवात्मा अक्षर माने अविनाशी कही गई है। इव सर्व माने तो नाशवान, अक्षर माने अविनाशी, सर्व माने नाशवान, अक्षर माने जो नाशवान ना हो अविनाशी कहा गया। तो यहां इसमें दो भगवान लिखे, सर्वपुरुष और अक्षर पुरुष, और इसी प्रकार इनके लोकों में स्थूल शरीर तो सबके नाशवान है, इनके बीच दोनों के अक्षर पुरुष के भी, और जीवात्मा ये तो किसी की मरती ही नहीं, कुत्ते की भी नहीं मरती, गधे की भी नहीं मरती। इन्होंने अनुवाद किया है, इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी ये दो प्रकार के पुरुष, पुरुष माने प्रभु हैं। इन्होंने लिखना था, इस संसार में नाशवान और अविनाशी ये दो भी दो प्रकार के परमात्मा हैं, भगवान हैं, पुरुष हैं, प्रभु हैं। और संपूर्ण प्राणियों के शरीर तो नाशवान है, जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। अब यहां किया कमाल 70वें में, उत्तम पुरुष है तो अन्य है, पुरुष माने प्रभु परमेश्वर, उत्तम पुरुष श्रेष्ठ प्रभु पुरुषोत्तम तो अन्य है, ऊपर वर्णित इस सर्वपुरुष और अक्षर पुरुष से इन दोनों से कोई और है, उत्तम पुरुष है तो अन्य परमात्मा इति उदाहरते। ये दास इस परमात्मा शब्द को डिफाइन करना चाहता, उसके लिए इतना कुछ आपके समक्ष प्रस्तुत करना पड़ेगा, इतना लंबा चौड़ा उदाहरण बनाना पड़ेगा। उत्तम पुरुष है तो अन्य, पुरुष भी लिखा है और परमात्मा भी लिखा है। उत्तम पुरुष है तो अन्य है, ऊपर वालों से दोनों भगवानों से कोई और है जिसे परमात्मा उदारतम माने कहा जाता है, जिसको परमात्मा कहा जाता है। यह लोकत्रयम जो तीनों लोकों में आविष्य माने प्रवेश करके विभर्ति सबका धारण पोषण करता है, वह अवय ईश्वर है। ये अवय शब्द है, ये अविनाशी, वो अविनाशी परमात्मा है, ईश्वर है। उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, यानी सही भगवान श्रेष्ठ परमात्मा तो ऊपर वर्णित दोनों से कोई और है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, और उसको अविनाशी परमेश्वर परमात्मा इस प्रकार कहा गया है। अब ये दास बताओगा, अब उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, या पुरुष और परमात्मा दो शब्दों का प्रयोग या अक्षरों का प्रयोग हुआ। अब 15वें अध्याय के 16वें श्लोक में अक्षर पुरुष भी कहा है। अक्षर पुरुष का अर्थ होता है अविनाशी प्रभु, और सर्वपुरुष का अर्थ सीधा ही नाशवान परमात्मा। पहले तो ये डिफाइन करना पड़ेगा कि ये अक्षर क्यों कहा और फिर नाशवान कहा अक्षर पुरुष को। पुण्यात्मा, ये सर्वपुरुष जो है, सर्वपुरुष ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, इसको ब्रह्म कहते हैं, और इसका ओम नाम है, ओम मंत्र है। गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में लिखा है, ओम तत् सत् इति निर्देश है ब्रह्मणे त्रिविध समर्थ है। ब्रह्मणे माने उस अक्षर पुरुष का जो इन दोनों से अलग है, उस परमात्मा के पाने का ओम तत् सत् ये तीन मंत्र का जाप है। उसमें ओम जाप सर्वब्रह्म का और तत् ये सांकेतिक है, ये अक्षर ब्रह्म का, अक्षर पुरुष का, और सत ये भी सांकेतिक के दास बताएगा, ये परम अक्षर पुरुष का, परम अक्षर ब्रह्म का, यानी पूर्ण ब्रह्म के, ये इनका अलग अलग मंत्र है। ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी है सर्वपुरुष यानी ब्रह्म, जिसको ज्योति निरंजन काल भी कहते हैं, जिसने श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके गीता जी का ज्ञान दिया, श्रीमद भगवत गीता का ज्ञान दिया। और ये तो सीधा ही सर्वपुरुष है, ये तो नाशवान है, और अक्षर पुरुष, अक्षर का अर्थ ही अविनाशी होता है, लेकिन अक्षर पुरुष भी नाशवान है, ये अविनाशी नहीं है। अब इसको डिफाइन करना है भाई, अविनाशी भी कहा और नाशवान भी कहा। जैसे इवन की एज देखनी पड़ेगी। ब्रह्म के तीन पुत्र हैं इस काल के, ज्योति निरंजन के, श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी, रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी। ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष की है। वो वर्ष कैसे बनते हैं? एक चतुर्युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इन चारों का मिलाकर के 43,20,000 वर्ष का समय होता है। इसको एक चतुर्युगी कहते हैं, चतुर्युग कहते हैं। और ऐसे ऐसे 1008 चतुर्युग का, ब्रह्मा जी का दिन इतनी ही रात्रि, इसको लंब संप 1000 युग का दिन इतनी ही रात्रि मानकर चलते हैं। और 30 दिन रात का महीना, 12 महीने का एक वर्ष, और 100 वर्ष की ब्रह्मा जी की आयु, 100 वर्ष की ब्रह्मा जी की आयु। इससे 7 गुना सतगुण विष्णु जी की, 700 वर्ष इस प्रकार बने हुए वर्षों के। और इससे 7 गुना 4900 वर्ष श्री शंकर भगवान सप्तम गुण की, और 70,000 बार जब तमगुण ये शंकर की मृत्यु हो जाएगी, तब एक युग होगा। किसका? उस अक्षर पुरुष का एक युग। और 1000 युग का दिन, इसमें चतुर्युग नहीं है, इसकी काउंटिंग में ब्रह्मा जी की आयु में चतुर्युग है, और अक्षर पुरुष की आयु की कैलकुलेशन में चतुर्युग नहीं है, ओनली युग है। 1000 युग ऐसे बने हुए हैं। 1000 युग का दिन इतनी ही रात्रि अक्षर पुरुष की, और 30 दिन रात का महीना, और 12 महीने का एक वर्ष, ऐसे बने हुए 100 वर्ष की आयु है अक्षर पुरुष की। यानी फिर भी मृत्यु है, अपुण्य आत्माओं। अभी पवित्र श्रीमद् भगवत गीता है, 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता अपने मंत्र का, कि अपनी भक्ति और मंत्र के विषय में विशेष रूप से बताता है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विवरण माम अनुसमरण ये प्रयाति तदनदेहम सयाति प्रभाम गति। मेरा एक ओम अक्षर है मुझ ब्रह्म का, माम ब्रह्म का, उच्चारण करके स्मरण करता हुआ जो प्राणी शरीर त्याग कर जाता है, वो ओम नाम के जाप से जो परम गति होती है, जो उपलब्धि होती है, उसको प्राप्त करता है। अब यहां एक साथ, क्योंकि आप जी परमात्मा की तरफ में बहुत घूम रहे हो, आप जी ने बहुत से संत भी मिले हैं, आपने बहुत से संतों का लिटरेचर भी पढ़ा है, आपको ये विशेष बताने की आवश्यकता नहीं भगवान बजलो काम आओगा। आपको ये प्रमाणित करना अति आवश्यक है कि परमात्मा कौन है, कैसा है और कैसे मिलेगा, उसका डिफाइन करना आपके सामने अति आवश्यक है, विद प्रूफ। तब भक्ति तो आप कर लोगे, जब ये पता लगेगा, सत्संग रहकर सत्संग भी सुनाएंगे। तो अब ये डिफाइन करना चाहते हैं कि हमारे सदग्रंथ हमें क्या अनमोल खजाना दे रहे थे, और ये अज्ञानी अनाड़ी संतों, ऋषि, ब्राह्मणों ने, गुरुओं ने, नकलियों ने हमारे को उल्टा पाठ पढ़ा रखा था, कैक है भी नहीं बता रखा भक्ति का, एबीसी भी नहीं बता रखी। और वही सदग्रंथ जिनको हम सर्वधारी मानते थे, तो कितना निर्मल ज्ञान दे रहे। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा, सुबह भी बताया था कि वो तत्परम कौन है जिसके बारे में आपने 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में श्रीमद भगवत गीता में बताया है। उसका उत्तर 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में दिया है गीता ज्ञानदाता ने कि परम अक्षर ब्रह्म है। एक तो अक्षर ब्रह्म को चाहे अक्षर पुरुष, एक परम अक्षर ब्रह्म यानी अक्षर पुरुष से भी श्रेष्ठ और परम है। और गीता जी अध्याय नंबर 5 और 7 में तो अपनी सतीथि बताता है, मेरी भक्ति कर मुझे प्राप्त होगा। और 8, 9, 10 में परम अक्षर ब्रह्म के विषय बताता है, उसकी भक्ति जो करता है उस तत्वदर्शी संत से, वो 3 मंत्र का नाम जाप लेके वो उसको प्राप्त होता है। फिर गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा है कि ब्रह्म लोक पर्यंत ये सभी ब्रह्म लोक यानी ओम नाम के जाप से ब्रह्म लोक प्राप्ति होती है, ब्रह्म का जाप है और ब्रह्म लोक में चला जाता है जिसको महास्वर्ग भी बोला जाता है। और वहां जाने के बाद भी फिर प्राणी को वापस जन्म मृत्यु में आना पड़ता है। गीता जी ज्ञान दाता ये ब्रह्म स्वयं कह रहा है गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं, और मेरे जन्म और कर्म अलौकिक है। 8वें अध्याय के 17वें श्लोक में जो अनुवादीन अनुवादकर्ताओं ने किया है बिल्कुल गलत रखे है, उसको अब स्पष्ट करना चाहते हैं। तो उसमें बताया कि जो उस परमात्मा की भक्ति करता है फिर उसकी दोबारा जन्म नहीं होता। और अक्सर पुरुष की यहां आयु कैलकुलेशन बता रखी है, 8वें अध्याय के 17वें श्लोक में आपको दिखाते हैं, ये देखिएगा अध्याय नंबर 8 श्लोक नंबर 16 में कहा है कि ये अर्जुन ब्रह्म लोक पर्यंत सब लोक पुनरावर्ती में, यानी ब्रह्म लोक तक भी सभी का जन्म और मृत्यु होता है। ये इन्होंने इस पर इसका विश्लेषण नीचे किया है, पुनरावृत्ति का क्या अर्थ होता है, अर्थात जिनको प्राप्त होकर पीछे संसार में आना पड़े ऐसे। और 15वें अध्याय के 4 श्लोक में कहा है कि तत्वदर्शी संत के मिलने के पश्चात उस परम पद परमेश्वर की खोज करनी चाहिए। ये देखिएगा अध्याय नंबर 15 और श्लोक नंबर 4, उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भलीभांति खोजना चाहिए जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार रूपी संसार वर्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुआ, अर्थात जिस परमेश्वर ने सर्व ब्रह्मांडों की संसार रूपी वृक्ष की रचना की है, उसी आदि पुरुष नारायण की मैं शरण हूं। ओहो, यानी कोई और है गीता ज्ञानदाता से, इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधि ध्यान करना चाहिए, प्रपदे माने पूजा करनी चाहिए, उसकी साधना करनी चाहिए, जहां जाकर फिर लौटकर संसार में नहीं आती। और गीता ज्ञानदाता कहता है तेरे मेरे बहुत जन्म हो लिए और आगे भी होते रहेंगे, ब्रह्म लोक पर्यंत ये सभी पुनरावर्ती में हैं। इन्होंने आगे अनुवाद गलत किया है कि मुझे प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता, नहीं है। नहीं तो गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 का ये सारा आशय खत्म हो जाता है। यह इसका अर्थ बनता है कि जो ये नहीं जानते कि मुझे प्राप्त होकर भी जन्म मृत्यु होती है, वो मुझे प्राप्त होकर फिर भी ब्रह्म लोक में जाते हैं तो भी वापस जन्म मृत्यु में आते हैं, इसका अर्थ ये है। अब इसका 8वें अध्याय का जो आपने 16वें श्लोक का सुना कि ब्रह्म लोक में गए हुए प्राणी भी वापस जन्म मृत्यु में आते हैं, इससे सिद्ध हुआ कि ओम नाम और ब्रह्म की साधना करने वाले भी पूर्ण मोक्ष प्राप्त नहीं होता। यहां कंसेप्ट क्लियर करना चाहता ये दास कि इन्होंने अनुवाद गलत किए हैं। 8वें अध्याय के 17वें श्लोक में उस अक्षर पुरुष की आयु बता रखी है, ये देखिएगा 8वें अध्याय का 17वां श्लोक, ये 8वें अध्याय का और ये 17वां श्लोक, ये 16वां आपने देखा कि आ ब्रह्मनाथ, यानी हे अर्जुन ब्रह्म लोक पर्यंत सब लोग पुनरावर्ती में, वहां गए हुए प्राणी फिर जन्म मृत्यु में आते हैं। 17वां इसमें देखना सहसर युग पर्यंतम, सहसर युग है यहां, सहसर चतुर्युग नहीं है, ये ध्यान करना यहां, क्योंकि ये मूल संस्कृत को हम अनुवाद करेंगे, इन्होंने गलत किया हुआ। इसमें सहसर चतुर्युग नहीं है, सहसर युग पर्यंतम, अह माने दिन और यथ ब्रह्मणे माने इस अक्षर पुरुष का, ब्रह्मणे का अर्थ होता है क्योंकि यहां आयु कैलकुलेशन है तो यहां ब्रह्मणे का अर्थ बनेगा इस अक्षर पुरुष परब्रह्म का, बड़े भगवान का, ब्रह्म से जो बड़ा है ब्रह्मणे बड़ा, उससे बड़ा विदु जान, रात्रिम रात्रि भी युग सेंसरांतम, इसमें चतुर युग नहीं है। ते अहो रात्रि विदु जना, ब्रह्मा, इन्होंने ब्रह्मण का सिद्ध दिया, ब्रह्मा नहीं, ये परब्रह्म लिखना चाहिए, परब्रह्म यानी उस ब्रह्म से नेक्स्ट प्रभु या अक्षर पुरुष का जो एक दिन है उसको इन्होंने अनुवाद गलत किया है। 1000 चतुर्युग, चतुर्युगी तक की अवधि वाला, यहां पर सेंसर युग पर्यंतम, नोट चतुर्युग, इसमें चतुर्युग नहीं है। तो यहां गलती कर दी इन्होंने, इन्होंने ब्रह्मा बना दिया ब्रह्मण का, परब्रह्म को। अब जिसने ज्ञानी नहीं है तो वह ऐसे गुड़ गोबर कर देता है, सदग्रंथों का भी जो आशय बदल देता है उसका अपने नालायक बुद्धि के कारण। ब्रह्मा का यहां ब्रह्मा नहीं, ये परब्रह्म कहो, अक्षर पुरुष का जो एक दिन है वो 1000 युग, 1000 युग का है, नोट चतुर्युग, चतुर्युग नहीं है। और इतनी ही रात्रि जानो, और जो पुरुष इसको तत्व से जानते हैं वह योगी जन काल के तत्व को जानने वाले, यानी वो तत्वदर्शी संत ही बता सकते हैं इन कोड वर्डों को। अब आज ये फिर अपने वहीं आते हैं, गीता जी 10 नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में कहा, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं, मेरे जन्म और कर्म अलौकिक है। कैसे, जैसे भी आपको बताया था कि एक ब्रह्मा जी की आयु कैसे बनी थी, 1000 चतुर्युग का दिन उतनी ही रात्रि, 30 दिन रात का महीना और 12 महीने का एक वर्ष, 100 वर्ष की आयु, उससे 7 गुना विष्णु की, विष्णु जी से 7 गुना शंकर जी की, शंकर जी की मृत्यु होगी इतने समय के उपरांत, ऐसे ऐसे 70,000 बार जब शंकर जी की मृत्यु हो लेगी तब एक काल की मृत्यु होगी, इस ब्रह्म की मृत्यु होगी जो गीता ज्ञान दे रहा है। इसके बाद क्या होता है, एक ब्रह्मांड का विनाश हो जाएगा, ये सभी प्राणी और ये काल और दुर्गा सभी मृत्यु को प्राप्त होकर उस परमेश्वर की कृपा से ये सभी प्राणी दूसरे लोक में चले जाएंगे, ब्रह्मांड में। वहां जाते ही परमात्मा का वर है इन दोनों को, दुर्गा और इस काल को, इनके एकदम वहां जाते ही युवा शरीर बन जाएंगे, और ये दोनों युवा होंगे, फिर उसके बाद ये नए सिरे से अपनी सृष्टि, ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति आदि फिर ये करेंगे, कुछ दुर्गा वचन से कर देती है, कुछ ऐसे सृष्टि क्रम से करते हैं। तो वो जो ये काल मरेगा, एक ब्रह्मांड का विनाश होगा, वो एक युग होगा, किसका, इस अक्षर पुरुष का। इसलिए यहां चतुर्युग नहीं लिखा है 8वें अध्याय के 17वें श्लोक में श्रीमद् भगवत गीता जी में, ओनली युग कहा है। 1000 युग का दिन और उतनी ही रात्रि होगी, ऐसे बना हुआ युग, एक काल की मृत्यु एक युग होगा, और ऐसे 1000 युग का दिन इतनी रात्रि, 30 दिन रात का महीना, 12 महीने का एक वर्ष, और ऐसे 100 वर्ष की आयु होगी, किसकी, अक्षर पुरुष की। इस प्रकार इसको भी अविनाशी कहा, लेकिन ये भी वास्तव में अविनाशी नहीं है। जैसे एक कप है चीनी का बना हुआ, सफेद मिट्टी सी का, ये तो अंडरस्टूड है, ये तो समझो सरपुरुष है इसका, ऐसे मटेरियल का शरीर, इसके प्राणियों का, इसका ये तो अंडरस्टूड है, परस पर गिरा और टुकड़े टुकड़े, क्रैक जरूर होगा। और दूसरा एक स्टील का कप हो, चाय पीने का, यानी स्टील धातु से बनी हुई कोई वस्तु हो, तो वो उस मिट्टी की धातु से बने हुए कप के तुलना में घना अविनाशी है, बहुत लंबे समय में हो तो होगा खराब, उसको भी जंग लगेगा, लेकिन वो पीरियड बहुत लंबा होगा। इस प्रकार उस धातु की तुलना में, मिट्टी वाली धातु की तुलना में स्टील धातु अविनाशी कही गई है, लेकिन है इसका विनाश, जैसे सोना ये ऐसे जंग से विनाश को प्राप्त नहीं होता, तो इसको अविनाशी हम कहें। तो ऐसे ही अब इस अक्षर पुरुष को अविनाशी कहा कि इसकी इतनी लंबी आयु है लेकिन मरेगा, मृत्यु इसकी भी होगी, लेकिन सर पुरुष की तुलना में इसको अक्षर पुरुष ही कहा। आगे फिर इसका निर्णायक ज्ञान दिया है गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में, स्पष्ट कहा है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य, उत्तम पुरुष तो कोई और ही है, श्रेष्ठ प्रभु तो कोई इन दोनों से कोई अन्य है, और परमात्मा इति उदारते जो परमात्मा कहा जाता है। अब यहां परमात्मा की डेफिनेशन आपको बताने जा रहे हैं कि परमात्मा उसे कहते हैं जो केवल सुख दे दुख ना दे। तो यहां गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में कहा कि वो परमात्मा कहा जाता है, वो तीसरे नंबर का। और ये लोक तरम आविश्य विभर्ति अवे ईश्वर है, वो वास्तव में अविनाशी परमेश्वर है और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। अब पहले ये प्रसंग क्लियर करते हैं कि परमात्मा इति उदारते है, जैसे हम अभी आपको बताया था कि इस पृथ्वी के ऊपर हम सुविधाएं देखते हैं तो अद्वितीय लगती हैं। जमीन के अंदर कितना मीठा जल, गर्मियों में ठंडा सर्दियों में गर्म, फलदार वृक्ष काजू किस्म सेब संतरे और ऐसे पदार्थ हैं, लाडू जलेबी बर्फी बालूशाही के में बना के खा ले। और फिर देखते हैं कि किस पड़ोस में देखा कि वहां हाहाकार मच गया, क्या हो गया, इकलौता पुत्र था मृत्यु को प्राप्त हुआ। फिर समाचार पत्रों में सुनते हैं कि एक परिवार के तीन सदस्य मर गए, एक शेष बच गया छोटा सा बालक एक्सीडेंट में। तो फिर भगवान ने जो सुविधाएं दी थी उनका यूज क्या हुआ हमें, फिर वो दयालु कहां रहा प्रभु। परमेश्वर कबीर जी ने आकर बताया ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 यानी 82 के मंत्र नंबर 1 से लेकर 3 तक, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 के मंत्र 26-27, इनमें स्पष्ट किया है कि वो परमात्मा कबीर देव सतलोक से अपने अमर धाम से सनातन परम धाम से गति करके आता, वहां से चलकर आता है और वो अपनी श्रेष्ठ आत्माओं को मिलता है, उनको ज्ञान देता है। तो उन श्रेष्ठ आत्माओं में से एक आदरणीय धर्मदास साहिब जी थे। धर्मदास जी को परमात्मा ने बताया कि धर्मदास तुम यहां जो अपनी संतान संपत्ति और जो सुविधाएं आप मान रहे हो हमारी है नहीं, काया तेरी है नहीं ये माया कहां से हो, चरण कमल में ध्यान रखो इन दोनों को खो। जब काया तेरी नहीं है, ये शरीर तेरा नहीं है, विनाश होगा तो अब माया तेरी कैसे होगी। तो धर्मदास जी ने पूछा है परमात्मा ये है क्या, फिर ये सांग है। तब परमात्मा ने कहा धर्मदास ये ऐसी व्यवस्था है, ये कसाई है, ये काल यहां का जो भगवान है जिसको ब्रह्म कहते हैं, सरपुरुष जिसको कहते हैं सरपुरुष, सरब्रह्म भी इसी को कहते हैं, ज्योति निरंजन इसी का नाम है। गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में स्वयं कहता है कि मैं काल हूं अर्जुन और सबको खाने के लिए अप्रवृत्त हुआ हूं। श्री कृष्ण काल नहीं थे, ना पहले कभी काल कहा गीता जी ज्ञान से अलग, ना बाद में कभी अपने आप को काल कहा। वो काल बोल रहा था भूत की तरफ उसमें प्रवेश करके प्रेत मत, मैं काल हूं और ये देख मेरा ये रूप है, 1000 भुजा 1000 पैर 1000 फंड दिखाई दिया, कलजा पाट दिया इसे योद्धा का। भगवान तो भगवान के दर्शन के लिए हम जाते हैं, अरीसा भगवान होता है इसका था तू इन मर जाएगी तय, जिसा अर्जुन ने दिखाया कि मेरा यू असली रूप है। तो भगवान के दर्शन इसलिए करने जाते हो, देखते आत्मा प्रसन्न हो, शीतल स्वभाव हो, बोलने की विनम्रता हो, प्यार मिले, दुख ना हो, सुखी सुख हो, इसलिए भगवान को ढूंढते। इसे बुढ़े ने देखते कलजा पाट जब बताओ उसने के गड्ढा, इसे भगवान ने तो वो कहे ये है मेरा असली रूप और मैं काल हूं और हम इसकी पूजा किया करते थे। और इसकी पूजा करने वालों को महर्षि कहा करते थे, बड़े विद्वान है। तो परमात्मा ने बताया काल है भाई, ये पहला तो सुरुमति साधी खदन भगवान पड़िया है, और जब इसका असली चेहरा सामने आता है इसे करतूत देखा तो काल है, जैसे कसाई बकरे पालता है उनके लिए सब सुविधाएं करता है, चरागाह बनाता है, है? और उसके चारों तरफ इंसेक्ट पशुओं से रक्षा के लिए उनके लिए एक डिफेंस तैयार करता है, ऊपर छाया बनाता है, शेड बनाता है उनके लिए, पानी का तालाब बनाता है, उनको पानी पिला के लाता है, चराता है, उनके ऊपर का हाथ उठ फेरे उन्हें लाड, तो वो देखता है जब कसाई आता है पशुओं के अंदर अपने, और वो देखता है से हाथ ला करके, वो तो नहीं देखे यू कै किलो का हो गया, कितना मांस बना इसमें, और वो बोड़ी आत्मा न समझ बकरे और बकरियां कि हमारा कितना दयालु स्वामी है, हमारी कितनी केयर टेक करता है, कितनी सुविधा का ध्यान रखता है, ये हमारा प्यारा है, उनको प्यारा समझकर उसको चाटते हैं, उसके ऊपर पैर फैलाते हैं, सीने से लगाना चाहते हैं, और वो इन्हों देखे ये कितने किलो का हो गया, कितने का बिकेगा, उधर तो सुविधा देता है जब तो वो अच्छा लगे, और फिर जब आ जा दो चार बकरों की डिमांड, वो न देखता किसका बेटा जाएगा, किसकी माँ जाएगी, किसकी बुआ कटेगी, वो तो लाठी लेकर आके ले नारी काट देता मोटे मोटे छांट के। तो ऐसी व्यवस्था इस काल के लोक में हमारी है, श्री विष्णु पुराण में स्पष्ट किया है, क्योंकि ये पुराण जो है श्री विष्णु पुराण जब शुरू होती है इसमें इस ये काल भी विष्णु रूप धारण कर लेता है, ये ब्रह्मा का भी रूप धारण कर लेता है, शिव जी का भी रूप धारण कर लेता है, और साधक जन जो साधना करते हैं ओम नाम के जापते किसी को विष्णु रूप में दर्शन दे देता है, किसी को ब्रह्मा रूप में, किसी को शिव रूप में, वो असमंजस में पड़े रह जाते हैं कि ये जो ये ब्रह्मा विष्णु महेश ये रजगुण तमगुण सतगुण यही है ये भगवान ओम नाम के जाप से जो धमे दिखाई देता है, ऐसे ये न अभी तक सारी बात बिगाड़ रखी थी। तो अब ये क्या कहते हैं, जैसे विष्णु पुराण स्टार्ट होती है ये उस काल के बारे में जानकारी दे रहा है, ये स्पष्ट करता है, देखिएगा श्री विष्णु पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, इसके अनुवादक हैं श्री मुनि लाल गुप्त, और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। अध्याय नंबर 2 के ये प्रश्न नंबर 4 पर श्री विष्णु पुराण अध्याय नंबर 2 यहां देखिएगा, इसके मंत्र नंबर 15 में, श्लोक नंबर 15 में, हे द्विज परब्रह्म का प्रथम रूप पुरुष है, हे द्विज परब्रह्म का प्रथम रूप पुरुष है, अव्यक्त और व्यक्त इसके अन्य रूप हैं, तथा काल उसका परम रूप है। अब ये अनुवाद करता और ये इसके वक्ता भी अनभिज थे, अज्ञानी थे, इन्होंने कोशिश की है डिफाइन कुछ करने की पर नहीं कर पाए। यहां हे द्विज ये परब्रह्म कहे है, परब्रह्म कहे है इस काल ने, विष्णु ने ये विष्णु रूप में दर्शन देते। यहां देखिएगा यही अध्याय नंबर 2 ही चल रहा है और इसका मंत्र नंबर 27 में, 15 आपने पढ़ा 27 पढ़ा, हे मैत्रेय प्रलय काल में प्रधान प्रकृति के साम्य अवस्था में स्थित हो जाने और पुरुष के इस काल के प्रकृति से पृथक स्थित हो जाने पर विष्णु भगवान का काल रूप परिवर्त होता है। विष्णु भगवान का काल रूप परिवर्त होता है। अब दुर्गा के साथ रहता है तब तो ये विष्णु रूप, ब्रह्मा रूप या शिव रूप धारण करता है, और दुर्गा को पार्वती, ब्रह्मा के साथ सावित्री रूप में, विष्णु के साथ लक्ष्मी रूप में, शंकर के साथ पार्वती रूप में रखता है, तो तब तो ये इन रूपों में रहता है, विष्णु रूप लक्ष्मी के साथ विष्णु रूप में रहता है। और जब उस दुर्गा को छोड़ देता है एक, तो ये अपने किसमें ब्रह्मांड में जाकर के अपने वास्तविक काल रूप में विराजमान हो जाता है। तो यहां लिखा है कि मैत्रेय प्रलय काल में प्रधान यानी प्रकृति के साम्यावस्था में स्थित हो जाने पर और पुरुष के इस काल के दुर्गा से पृथक स्थित हो जाने पर ये किस में ब्रह्मांड में चला जाता है, भगवान विष्णु का काल रूप परिवर्त होता है। और यहां इसी के बारे में जिक्र है ये कि हे द्विज परब्रह्म यानी इस काल का विष्णु कहो चाहे काल महाविष्णु कहो चाहे काल कहो, ब्रह्म है ये, परब्रह्म गलत लिखा है, हे द्विज उस परब्रह्म का प्रथम रूप पुरुष है, भगवान जैसा है, परमात्मा जैसा है, और अव्यक्त और व्यक्त उसके अन्य रूप हैं, साकार और निराकार जो ना दिखता और किसी रूप में आ जाता है, और परंतु तथा काल उसका परम रूप है। प्रथम पुरुष उसका भगवान जैसा है, यानी फर्स्ट इंप्रेशन तो इसका ऐसा दिखे है, फर्स्ट इम्प्रेशन तो देखे भाई भगवान ने बड़ी सुविधा दे रखी है, बड़े देखो झरने बह रहे हैं कि तो बाग बगीचे खड़े हैं और बड़ी सुंदर हवा चल रही है, नीचे जल है पानी मीठा है, तो यू देखा तो यू भगवान ने पड़ा है परमात्मा दिखे। और जब यू हमारी दुर्गति कर रहा घसकाट रखी, किसी का बेटा मार दिया, किसी बेटी मार दी, किसी कैंसर होगी, किसी को कुछ दुख और कहीं ओले पड़ गए, सिर फूट गए, ब्लड मर खत्म हो गए, नो देखा तो यू इसका असली रूप तो यू है, ये काल है। तो यहां बताया है कि जैसे कसाई बकरे पालते हैं, पालता है उन बकरों को वो सुविधा देता तो लगे है ये तो बड़ा अच्छा आदमी है, लेकिन उनकी इतनी बुद्धि काम नहीं करती कि शाम में तीन चारा निकाल ले गए, एक कड़च कर दिए। तो अभी तक हमारी सती थी, हमारी बुद्धि यहां सेट थी, हमें पता ही नहीं था हम करें तो करें क्या, कहां जाऊं। तो यहां गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में पुण्यात्माओं ये आध्यात्मिक ग्रंथ है, ये कोई बालकों के लिखे हुए या सांगी और भजनी और इन फिल्मी कलाकारों के बनाए हुए गाने नहीं है, ये उस ये बहुत ही अच्छा विधान प्रभु का दिया, इसमें एक एक शब्द का बहुत अलग से विश्लेषण होता है, बहुत महत्व गुड़ रहस्य है। उत्तम पुरुष है तो अन्य है, परमात्मा इति उदारते, वास्तविक भगवान श्रेष्ठ प्रभु तो ऊपर वाले सरपुरुष और अक्षर पुरुष से कोई और ही है, जिसको परमात्मा कहते हैं। ओए होए, परम माने श्रेष्ठ, आत्मा माने आत्मा, अच्छी आत्मा कहते हैं, जो उत्तिष्ट आत्मा है वास्तव में, जिसको परमात्मा कह सकते हैं। अब कर्ण तो परमात्मा हम इसने भी कहे हैं, लेकिन इसको परमात्मा कह जरूर है, पर गुण तक बिना परमात्मा वाले, परम आत्मा वाले श्रेष्ठ आत्मा, नेक आत्मा, चीटी तक भी ना मारे, केवल सुख दे और दुख ना दे, उसको परमात्मा कहते हैं। तो वो सतलोक में सतपुरुष है, वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो कबीर देव है, और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है वो अविनाशी परमात्मा। अपने आत्मा इससे भी एक और बात समझ में आओगी, अपने गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 में क्या व्याख्या की है कि ऊपर को जड़ वाला और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष जानो, और इसकी तीनों गुण रूप शाखा रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव, और जो संत इस संसार रूपी वृक्ष के सभी अवयवों को सभी पार्ट्स ऑफ द टेरी के जो बता देगा भिन्न भिन्न के जड़ कौन भगवान है, तना किसे कहते हैं और डार किसे कहते हैं और शाखा किसे कहते हैं और पत्ते क्या है, स वेदवित वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, वो तत्वदर्शी संत है। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में ये बताया है कि कोई तो ऊपर को पैर करके नीचे को सिर करके साधना करता है, कोई अन्य देवताओं की पूजा करता है, कोई व्रत रखता है, कोई स्वाध्याय ही करता है, कोई केवल अहिंसावादी ही है। यानी अपनी अपनी साधनाएं वो ऐसे कर रहे हैं और प्रत्येक साधक अपनी साधना को पाप नाशक जानता है। यानी जो भी कोई क्रिया कर रहा है वो उन्हें सोचा बढ़िया है, मुझे सुख देगी। अगर उसको ये पता हो ये सुख नहीं देगी या पाप नाशक नहीं है, अच्छी नहीं है, तो तुरंत त्याग दे वो। तो वो अपनी अपनी साधनाओं को वो अपनी अच्छी मानकर कर रहे हैं, लेकिन इस प्रकार की विस्तृत जानकारी चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में गीता जी का है कि इस तरह की विस्तृत जानकारी उस सचिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, सचिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार से कही गई है। सचिदानंद घन ब्रह्म मुखे शब्द लिखा है, ब्रह्मणे मुखे का अर्थ होता है उस सचिदानंद घन ब्रह्म के मुखारविंद से, उसके अपने मुख से बोली गई वाणी में वो विस्तार से कही गई है। और उस ज्ञान को, वो तत्व ज्ञान है, गीताजी 10:4 के श्लोक नंबर फिर 34 में कहा कि उस सचिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में जो तत्व ज्ञान दिया है, उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ और उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर नम्रता पूर्वक प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्म तत्वों के बारे में जानकारी देंगे। फिर जैसे वो बतावे ऐसे कर। और वो तत्वदर्शी संत होगा कैसा, 15वें अध्याय के प्रथम श्लोक में उसका जानकारी दे दी, पहचान बता दी कि जो उल्टे लटके संसार रूपी वृक्ष को सब अवयवों के साथ साथ भिन्न भिन्न बतावेगा वो तत्वदर्शी संत है। पुणात्माओं, ये एक ऐसा विद्यालय है, एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसके पढ़े हुए बच्चे मोक्ष प्राप्त करेंगे, सतलोक चले जाएंगे। इसलिए ये दास एक टीचर बनाया परमात्मा ने। और टीचर का प्रथम कर्तव्य होता है कि स्टूडेंट्स को, विद्यार्थियों को सिलेबस से ही जानकारी दे, मनमुखी बाहर की कोई कथा ना सुनावे। अभी तक हमारे को सिलेबस का नाम लेकर के आउट ऑफ सिलेबस स्टडी कराई गई है, इसलिए आज तक हम ये नहीं जान पाए कि ब्रह्मा विष्णु महेश की स्थिति क्या है। ये जन्मते हैं, इनको हम अजरों अमर कहा करते थे, इनका इतिहास, इनकी जीवनी बताती है, कितना नासवान है, इनके माता पिता भी हैं, हमें बताया गया था इनके कोई माता पिता नहीं है। तो इससे सिद्ध है कि हमारे जितने भी पूर्वज थे, इन अनाड़ी अज्ञानी गुरुओं ने सारा उनका जीवन व्यर्थ करा दिया, सारे भूत बना दिए, फिर उनके श्राद्ध का डला दिए, 36 पंगे और पा दिए हमारे गेले, 13 मी करो, वैसे करो, फलान करो, इसको गंगा में ले जाओ, है, और फिर वर्षी करो, महीना करो, छमाही करो, और फिर श्राद्ध शुरू कर दो। इन्हें तो अपने खान का धंधा बना रखा था, पहले भूत बनवाए और फिर श्राद्ध कटवाए। हमने अपने सिलेबस पर ही विश्वास करना। गीता जी 10:16 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमानी पूजाएं करते हैं, साधनाएं करते हैं, मनमाना आचरण करते हैं, उनको ना तो कोई सुख हो, ना गति हो, ना उनकी कोई सिद्धि हो, अर्थात यूजलेस।